वही शारदा जो उसे हंसाती थी, वही शारदा जिसकी बजाई हुई वीणा के स्वर में वह बह गया था, उसे चिढ़ाते चिढ़ाते ही उसकी सखी बनी थी, जो उसके लिए सब कुछ हो गई थी, जो उसका अपना घर नहीं था और जिसके लिए आज वह इस आगरा से भर रहा था, जो स्वयं उससे सहा नहीं जाता था। नीड़ के बिल्कुल पास आकर वह रुका। क्या उसे आशा थी कि वह शारदा के द्वार पर खड़ी पाएगा और वह उसे सामने देखकर पुलक उठेगी? वैसा नहीं हुआ। वह द्वार पर नहीं थी, द्वार बंद थे और बहुत दूर से जिसे देख देख कर दिन काटा करता था, वह गरुड़ नीड़ की चिमनी से उठने वाला धुआं भी आज नहीं था। सहकर सहमा हुआ सा मकान के दरवाजे पर गया, उसमें ताला पड़ा हुआ था। शीशे में से भीतर झांक कर देखा, मकान बिल्कुल खाली था। थोड़ी देर तक उसे समझ नहीं आया कि उसके सामने है, फिर धीरे धीरे ज्ञान होने लगा और वह लड़खड़ा कर वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। जब वह उठकर चल दिया तब उसका मन शून्य था। उसके बाद उसे इतना समय ही नहीं मिला कि वह इस चोट से घायल हो या इससे समझे। जिस प्रकार घोंघे के भीतर रहने वाला जीव तभी बाहर निकलता है जब वह भूखा होता है या जब वह प्रेरणा खोजता है और तृप्त होकर फिर घोंघे के भीतर घुस जाता है, उसी प्रकार असंतुष्ट और अतृप्त होकर शेखर भी बाहर निकला हुआ था। अभागा होकर कदम कदम पर आहत होकर वह यदि लौटना चाहता तो उसके भीतर की भूख उसे लौटने नहीं देती थी। वह आघातों के लिए खुला था, कवचहीन था और जीवन उसके सुरक्षित घर से दूर दूर खींचे लिए जा रहा था। वह चुपचाप बैठा हुआ रोटी खा रहा था, साथ साथ सोचता जा रहा था। माँ पास ही रसोई में बैठी थी, पिता उससे बात कर रहे थे। उसका जो भाई बड़ा कॉलेज से भाग गया था उसी का कुछ समाचार तार द्वारा आया था। पता लगा था कि वह कलकत्ते में पुलिस की नौकरी करने की कोशिश में है, यही पिता माँ को बता रहे हैं और शेखर भी अनमना सुन रहा था। भाई ने कलकत्ते में कॉलेज का पता तो दिया था पर माँ बाप का नाम गलत बताया था। कॉलेज में जांच होने पर वहीं से पिता को तार आया। पिता को सबसे अधिक आघात इस बात से पहुंचा कि पुत्र ने अपनी वदलियत गलत बताई, ऐसा ही कह रहे थे। माँ ने कहा, मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ, भला ऐसे लड़के का कोई विश्वास कैसे करे। पिता ने कहा, माँ फिर बोली और सच पूछो तो उसका स्वर एकाएक धीमा पड़ गया, सच पूछो तो मैं इसका भी विश्वास नहीं करती इसका। शेखर ने कुछ देखा नहीं, लेकिन वहां बैठे भी उसकी कल्पना को वह पूरा दृश्य देखते देर नहीं लगी। वह शर्मभान सा ठहर गया सा भाव, वह शेखर की ओर उठा हुआ अंगूठा उसको और देखने लगा। शेखर रोटी छोड़कर उठ गया, कमरे से बाहर उसका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, उसके आगे अंधकार सा छा गया। शाम तक वह वहीं वैसा ही पत्थर सा बना रहा, खाया पिया कुछ नहीं। माँ आई झड़क झड़कड़ती रही पर अपने को कोसती रही, रोई चलाई गई। पिता आए डांट डपट कर चले गए। रात हुई, सब सो गए, सन्नाटा हो गया। शेखर ने अपने कमरे के द्वार बंद करके कुंडी चढ़ा दी, बत्ती बुझाई और चारपाई पर बैठकर सुलगने लगा। बहुत रात गए, उसने अपनी डायरी उठाई और उसमें अपने उफान उतारने की कोशिश करने लगा। अच्छा होता कि मैं कुत्ता होता, चूहा होता, दुर्गंधमयी कीड़ा कृमि होता, बनिस्बत इसका कि मैं वैसा आदमी होता जिसका विश्वास नहीं है। वह उठ खड़ा हुआ, दीवार की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, आई हेट हर, अर्थात मैं उससे घृणा करता हूँ, और फिर कपड़े पहनकर खिड़की की राह बाहर कूद कर घूमने चल दिया। कुछ मील दूर एक बाग में पहुँचते पहुँचते उसने प्रतिज्ञा कर ली कि वह माँ की नहीं मानेगा, उसका कोई संपर्क नहीं रखेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें माँ को बाध्य होकर उसकी रत्ती भर भी विश्वास करना पड़े। यह प्रतिज्ञा उसने जवानी नहीं की, एक कागज पर लिख डाली, पर तभी उसके भीतर एक और परिवर्तन हुआ। उसने उस कागज के चिथड़े किए, उन्हें गीली जमीन पर फेंका और पैरों से रौंदने लगा, तब तक जब तक कि वे कीच में सन कर दबकर अदृश्य ना हो गए। मैं योग्य हूँ, योग्य रहूंगा, उसमें विश्वास की क्षमता नहीं है तो मैं क्यों पराजित होऊंगा। सवेरा होते होते वह घर लौट आया। एक असंबद्ध दृश्य मुझे दिखता है, वह अत्यंत सजीव है, मैं उसे प्राय बिल्कुल प्रत्यक्ष देख सकता हूँ, किंतु उसका ठीक अनुक्रम मुझे नहीं मिलता। चित्र में अपना जो रूप मुझे दिखता है उससे मैं अनुमान करता हूँ कि उसी वर्ष का है, पर इस अनुमान को पुष्ट करने में स्मृति सहायक नहीं होती। मैं बैंक से पिता का चेक भुनाकर उसके मासिक वेतन का रुपया लाया हूँ। पिता दफ्तर गए हुए हैं, मैं माँ को वह रुपया अपनी जेब से निकाल कर दे रहा हूँ। कई तरह के बहुत से नोट हैं और बहुत से चांदी के रुपये, इसलिए माँ के बढ़ाए हुए हाथ को देखकर मैं कहता हूँ, माँ आंचल में लो, बहुत है। माँ धीरे धीरे आंचल फैलाती है, पर हंसती हुई कहती है, आंचल तो तब फैलाओगी जब तुम कमा के लाओगे, इसके लिए क्या। मैं रुपये डालने को हुआ हूँ पर रुक जाता हूँ, एक विचित्र दृष्टि से माँ की ओर देखता हूँ जिसे वह नहीं समझती, शायद मैं भी नहीं समझता। फिर उसके फैले हुए आंचल की उपेक्षा करते हुए मैं तिपाई घींच कर उस पर रुपया रख देता हूँ, गिन लो, और वहाँ से हट जाता हूँ। पैराग्राफ चेंज। जब कभी मुझे विचार आता है कि मेरे आज यहाँ होने के कारणों में से एक कारण यह भी हो सकता है या अविश्वास की प्रतिक्रिया, तब ना जाने क्यों माँ को इस विराट परिवर्तन के लिए, इस इतने गहरे प्रभाव के लिए श्रेय देने की इच्छा नहीं होती। ना जाने क्यों मेरा जी चाहता है उसके इतने भी उपकार का भागी ना हो, उसके इस अनिश्चित सत्प्रभाव के लिए भी उसका आभारी ना रहूं। उस दिन के बाद सोते जागते चैतन्य में और सुपुष्टि में, संग्राम और पलायन में, जितनी अधिक बार अविश्वास के उस भयंकर आकस्मिक ज्ञान का चित्र मेरे सामने आया है, उतनी बार कोई चित्र नहीं आया। मुझे याद है अपनी गिरफ्तारी के बाद पहले पहल जब मुझे घर का विचार आया तब यही था कि जब माँ सुनेगी तब इस समाचार के प्रति उसका पहला भाव तो विजय का ही होगा, जैसे मैं तो जानता ही नहीं। मैंने कभी उसका विश्वास ही नहीं किया, फिर भी वह दुखी होगी, रोएगी भी, जलेगी भी, पर उसका पहला विचार चाहे वह कितना भी क्षणिक क्यों ना हो और तत्काल ही क्यों, गलानी क्यों ना हो, वह पहला विचार तो यही होगा कि उससे यही आशा होनी चाहिए थी और ना जाने क्यों इस विचार में मुझे बड़ी संतावना दी थी, एकदम शांत कर दिया था और पुलिस के अत्याचारों के प्रति सर्वथा निरपेक्ष बना दिया था। क्षमा हृदय का धर्म है, लेकिन वह नहीं कर पाता। इस घटना से जो कुछ मुझ पर बीता उसी के कारण मैं क्रुद्ध हुआ ऐसा नहीं है, कम से कम अब नहीं है। मैं जानता हूं कि इस घटना ने भी हुई होती तो मैं इस दिशा के अग्रसर होता, यही बनता जो अब बना हूं। मैं भीतर जन्मता ही कोई शक्ति थी या शक्ति का अंकुर था जो मुझे अरुद्ध गति से इधर ही प्रेरित कर रहा था और करता रहता, चाहे माँ मुझसे या मेरे संबंध में कभी बात ही ना करती। यह ज्ञान जहाँ एक ओर मुझे क्रोध नहीं करने देता, वहीं दूसरी ओर कृतज्ञ भी नहीं होने देता। मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं, उत्पन्न होते हैं। विद्रोह बुद्धि परिस्थितियों के संघर्ष की सामर्थ्य, जीवन की क्रियाओं से, परिस्थितियों के घात प्रतिघात से नहीं निर्मित होती। वह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन नहीं है, उसका अभिन्नतम अंग है। मैं नहीं मानता कि देव कुछ है, क्योंकि हमने कोई व्यवस्था, कोई बाध्यता है तो वह बाहर नहीं, भीतर है। यदि बाहरी होती, परकीय होती, तो हम उसे देव कह सकते, पर वह तो भीतरी है, हमारी अपनी है। उसके पक्के होने के लिए भले ही बाहरी निर्मित हो, उसे हम व्यक्तिगत नियति, जिसे इंग्लिश में पर्सनल डेस्टिनी कह सकते हैं। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि कार्ल मार्क्स ही उत्पन्न हुआ था या कि शैली ने संसार से कुछ नहीं सीखा या कि त्रात्स्की अपने संस्कार द्वारा उतना ही निर्मित नहीं हुआ जितना कि उसने संसार को बनाया। विद्रोही हृदय की एक विशेषता है कि वह अपने विकास में फैलते हुए इसलिए विचारों को अपनाकर भी विद्रोही रह जाता है, क्योंकि वह अपने काल के अग्रणी लोगों से भी आगे ही रहता है। इसलिए तो प्रतिक्रियावादी जर्मनी में उत्पन्न होकर और पल कर भरे आइंस्टाइन विद्रोही है, और संसार के सबसे विराट, सबसे अधिक आग्रणी, घोरतम युग प्रवर्तक रूसी क्रांति की गोद में पलकर भी स्टेलिन विद्रोही नहीं हो पाया, जूठन बिनने वाला ही रह गया है। यदि ऐसा है, तब तो विद्रोही विचार का प्रचार करना व्यर्थ है। नहीं, यदि प्रचार इस आशा से किया जाए कि उसके द्वारा नए विद्रोही बनाए जा सकेंगे, विद्रोही सामर्थ्य उत्पन्न की जा सकेगी, तब तो वह निष्फल होगा ही। किंतु यह उद्देश्य यह रखा जाए कि इसके द्वारा पहले से विद्यमान क्रांति शक्ति का संचय किया जा सकेगा, उसे पथ निर्देश दिया जा सकेगा, तब अवश्य ही यह आशा फलीभूत होगी। और फिर विद्रोह स्वाभाविक नेता है, उसके अनुयायी सभी विद्रोही ही हो, या क्यों आवश्यक है? मैं बढ़ई हूँ, वसूली बटाली के प्रयोग से कुछ बनाता हूँ, तो वसूला और बटाली भी मुझ ऐसे स्वयं संचालित अंतर प्रेरित हो या बाध्यता क्यों? मैं अनेक व्यक्ति ऐसे देखे हैं जो कहते हैं और समझते हैं कि किसी विशेष मानसिक प्रतिक्रिया ने उन्हें क्रांतिकारी बना दिया है, जैसे तिलक की अंत्येष्टि ने, या मार्शल लॉ के दृष्टियों ने, या जतीन दास की भूख हड़ताल ने। वह झूठ बोलते हैं, या उन्होंने इतनी गहरी आत्मविवेचना ही नहीं की जिससे यह बाह्य कारण के पीछे अपनी सच्ची विद्रोह इच्छा को देखे, या फिर उनमें इच्छा ही नहीं और विद्रोही ही नहीं। वे हैं क्रांति के डरोने, जिनमें विद्रोह का बाह्य आकर और भावुक क्षमता तो है, किंतु यह अस्थायित्व और सार देने वाली अनिवार्य आग्नेय आंतरिक प्रेरणा नहीं। किसी भी घोर खिंचाव के काल में वह नंगे हो जाते हैं, उनका आंतरिक छूछापन, दिवालियापन प्रकट हो जाता है। नृसिंह की शक्ति और प्रभावशीलता का आडंबर करने वाले इन लोगों की गहराई में छिपी हुई भेड़ निकल पड़ती है और ममियाने लगते हैं। आज हमारे नेता बार बार कहते हैं, हमारा विद्रोह केवल मात्र आर्थिक है, हमारे घर में रोटी नहीं है, रोजी हमें मिलती नहीं, हम भूखे हैं, इसलिए हम विद्रोही हैं। मैं समझता हूँ कि यह कहना क्षुद्रता है, अपना घोरतम अपमान है। दिन था जब धर्म की सत्ता थी, तब हमारे ढोंगी नेता विद्रोह को छोटा दिखाने के लिए कहा करते थे। प्रजा का द्रोह धार्मिक नहीं, सामाजिक है, हमें समाज सुधारने का अधिकार होना चाहिए। फिर समाज की सत्ता हुई, तब वे ढोंगी उसका सामना करते हुए डरे और कहने लगे कि हम राजनीतिक पुनर्संगठन मांगते हैं। तब राजशक्ति की सत्ता हुई और वह कहने लगे कि हम राजनीतिक अपराध कब करते हैं, हम तो केवल अर्थसंकट के विरोधी हैं। क्षुद्र, क्षुद्र, क्षुद्र। मैं कहता हूँ, ओ विद्रोहियों, आओ पहले इस धम्भ को काटो, जानो, समझो, घोषित करो कि हम या उस दुर्व्यवस्था के नहीं, हम इस ऐसेपन के ही एटादृशत्व मात्र के विरोधी हैं। हम सभी के कुछ बदलना चाहते हैं। हमारी विद्रोही प्रेरणा धर्म के, समाज के, राजसत्ता के, अर्थसत्ता के और अंत में अपने व्यक्तित्व के प्रति विद्रोही हैं। मूर्ति का निर्माण हो सकता है, मृत्तिका का नहीं। उसी मिट्टी से अच्छी प्रतिमा भी स्थापित की जा सकती है, बुरी बुरी भी। पर जहाँ मिट्टी ही ना हो, वहाँ कितना ही प्रचार से, कितनी भी शिक्षा से, कितनी भी ज्वाजलायमान बलिदान से मूर्ति नहीं बन सकती। विद्रोही हृदय को विद्रोही गलन की आवश्यकता है, उसी प्रकार जैसे मृत्तिका को कलाकार के स्पर्श की। विद्रोही को संपूर्ण करने के लिए, एक मानव विभूति बनाने के लिए मन शक्ति की घोरतम नियंत्रण की, अथक परिश्रम की आवश्यकता है। वैसे ही जैसे मृत्तिका से एक काला की वस्तु तैयार करने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। किंतु जब शिक्षा पाकर सब कृत्रिम योग्यताएं प्राप्त करके उसके आंतरिक शक्ति से हीन व्यक्ति उतना ही क्रांतिकारी हो सकता है जितना कि सब अलंकारों से अलंकृत किंतु प्रतिभा से हीन चित्र एक कला की वस्तु हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार एक लियोनार्डो दा विंची को या एक रविंद्रनाथ ठाकुर को उत्पन्न करने के लिए सहस्त्र वर्ष का परिश्रम भी अधिक नहीं है, उसी प्रकार एक संपूर्ण और आदर्श विद्रोही को उत्पन्न करके ही एक समूची शताब्दी बल्कि एक समूची संस्कृति सफल हो जाती है। कलाकार के लिए कला की अंतःशक्ति के उद्बोध के बाद सबसे महत्वपूर्ण विभूति है कला के प्रति एक पवित्र आदर भाव। उसी प्रकार क्रांतिकारी के लिए क्रांति की अंतःशक्ति के बाद सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है क्रांतिकारिता के विद्रोह भावना के प्रति एक पूजा भाव। इसी के द्वारा उसमें इतनी सामर्थ्य आती है कि वह अपने कार्य में अपने को खोकर उसमें अपने व्यक्तित्व को संपूर्णता लवणहीन करके भी उसके तटस्थ विवेचना कर सकता है। इसी के द्वारा वह बहता है तो अपनी इच्छा से बहता है, मरता है तो आत्मबलिदान की भावना से मरता है, संसार में अपने को भुलाता है तो अपने व्यक्तित्व को पहचान कर, और इसी के द्वारा केवल इसी के द्वारा वह अनेक अनैतिक कार्य करके भी उसके दाग से बचा रह जाता है, पाप करके भी पवित्र रहता है, और इन्हीं निष्कलंक पापों में क्रांतिकारी के लिए एक अत्यंत करणीय पाप है घृणा।